नमस्कार भारत, 28 अप्रैल दिन शनिवार, मैं हूँ सर्वप्रिया सांगवान। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुलाकात पर जानेंगे ट्रंप के मन की बात।
It's never gone this far. I don't think it's ever had this enthusiasm for somebody for them wanting to make a deal. And yeah, I agree.
देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में हड़ताल, मरीज हो रहे हैं बेहाल।
सर यहाँ पे मनमानी चल रही है, कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है जो जहाँ पड़ा है बिस्तर पे वो पड़ा ही है।
यूपीएससी परीक्षा टॉप करने वाले अनुदीप दुरीशेट्टी ने बताया वे किससे लेते हैं प्रेरणा।
The way he has led his country through the war in tough times, बहुत ही एक he was an example, a great leader.
होगी अखबारों की समीक्षा और सुनवाएंगे रेहान फजल की विवेचना, लेकिन उससे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। कल उत्तर कोरिया के सुप्रीम नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच ऐतिहासिक मुलाकात हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों कोरिया के शीर्ष नेताओं के बीच हुई वार्ता का स्वागत किया है, मगर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया पर जो दबाव बनाया गया था उसे कम नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोनों कोरियाई नेताओं के बीच हुई मुलाकात का श्रेय भी लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज चीन के वुहान में दूसरे दिन अनौपचारिक वार्ता करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि ये सम्मेलन दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों का नया अध्याय शुरू करेगा। दोनों देशों की अनौपचारिक वार्ता का आज आखिरी दिन है और इसमें कई मुद्दों पर सहमति बन सकती है। चर्चा के विषयों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि वो ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप के साथ बातचीत जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हुआ समझौता उसके परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार धीमी करने के लिए पहला कदम साबित हुआ है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाएगा, मगर उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या इसके लिए बल प्रयोग करेंगे या नहीं। ईरान के साथ वैश्विक ताकतों के परमाणु समझौते को लेकर जर्मन चांसलर ने कहा,
Genauso müssen wir darauf achten im Kampf und im Verhältnis zum Iran und im Kampf auch gegen dort die Nuklearisierung.
हमें देखना होगा कि ईरान के परमाणु शक्ति हासिल करने के प्रयासों के खिलाफ हमारी लड़ाई में ये समझौता पहला कदम है। इससे ईरान पर नजर रखने की प्रक्रिया भी आसान हुई है और उसके कार्यक्रम की रफ्तार भी घटी है। हमें जर्मनी के दृष्टिकोण से भी सोचना होगा कि ईरान के प्रयासों को कैसे सीमित किया जाए। मुझे लगता है कि यूरोप और अमेरिका इस मामले पर साथ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ सीरिया में चल रहे खून खराबे को रोकने के लिए भी हमें साथ काम करना होगा। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने आरोप लगाया है कि देश की पुलिस उन्हें पद से हटाने की साजिश कर रही है। इसके लिए उन पर अभियोग लगाए जा रहे हैं। टेमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। ब्राजील के एक अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति और उनके परिवार की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच की जा रही है। अखबार के मुताबिक टेमर पर आरोप है कि परिवार के सदस्यों के नाम संपत्ति खरीदकर राष्ट्रपति ने हवाला के जरिए लाखों डॉलर की हेराफेरी की है। सहायता समूहों का कहना है कि सोमालिया में आई भीषण बाढ़ से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित ज्यादातर इलाके पहले से ही संघर्ष और 4 साल के सूखे से जूझ रहे थे। लोग यहां पर अस्थायी से ढांचों के नीचे रहते हैं जो बारिश को नहीं झेल सकते। लोगों के शौचालय भी पानी से भर चुके हैं या तबाह हो चुके हैं। हीरान इलाके में नदियों के किनारे तोड़ने की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। नॉर्वे की शरणार्थी परिषद के विक्टर मोजेस ने कहा कि अब बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है।
They do not have access to clean water.
लोगों के पास ना तो पीने का साफ पानी है और ना ही शौचालय हैं। भारी बारिश के कारण चारों तरफ प्रदूषित पानी फैल गया है। कई इलाकों में मच्छर तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि बाइडोआ प्रांत में। इससे स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतें हो सकती हैं। खाद्यान्न का संकट तो बना ही हुआ है, जान माल के नुकसान की भी आशंका है। नॉर्वे की शरणार्थी परिषद के विक्टर मोजेस के शब्द आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली बलों ने सीमा के पास हो रहे प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे 3 फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। सैकड़ों लोग इस गोलीबारी में जख्मी भी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं सर्वप्रिया सांगवान। शुक्रवार का दिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए खास था। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पहली बार दक्षिण कोरिया की जमीन पर कदम रखा और राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात की। दोनों नेता कोरियाई युद्ध को औपचारिक तौर पर खत्म करने और कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु रहित करने पर राजी हो गए। लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और किम की बातचीत पर इसका क्या असर होगा, ट्रंप इस मुलाकात को लेकर क्या सोचते हैं, पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं आदर्श राठौड़।
उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने वार्ता के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया है कि कोरियाई प्रायद्वीप में अब कोई जंग नहीं होगी और पूरे कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त किया जाएगा। दोनों कोरिया के शीर्ष नेताओं की वार्ता का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वागत किया है, मगर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया पर बनाया गया दबाव कम नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि जब तक कोरियाई प्रायद्वीप परमाणु हथियारों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उत्तर कोरिया पर पूरा दबाव बना रहेगा। ट्रंप ने कहा कि किम जोंग उनके साथ जून में प्रस्तावित मुलाकात के दौरान वो समझौते की कोशिश करेंगे और अगर सकारात्मक रुख नजर नहीं आया तो वार्ता बीच में छोड़ देंगे। अमरीका को पहले से ही इस्तेमाल किया जाता रहा है, उत्तर कोरिया में पैसा जा रहा है और कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। किसी बात पर सहमति बनने के बाद आप इसे समझौता कह सकते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि आप समझौता करें और बाद में पलट जाएं। हम इसका हल तलाशेंगे और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वार्ता छोड़ देंगे पूरे सम्मान के साथ। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ट्रंप ने आशंका जताई है कि उत्तर कोरिया अपने वादे तोड़ सकता है। कोरियन पेनिनसुला फ्यूचर फोरम की एक्सपर्ट डुओन किम कहती हैं कि दोनों कोरिया के नेताओं से किम जोंग उन और ट्रंप की मुलाकात का रास्ता खुल गया है। हालांकि वो भी मानती हैं कि उत्तर कोरिया ने जो वादे किए हैं उन पर सावधानी से नजर रखी जानी चाहिए। इस मामले में उत्तर कोरिया का रिकॉर्ड खराब है। बार बार उन्होंने दिखाया है कि वे अपने वादे पूरे नहीं कर सकते। वे जताते हैं कि समझौता करना चाहते हैं और समझौते से बाहर निकलकर वो अपने परमाणु कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में जुटे रहते हैं। इतिहास से सबक लें तो मुझे ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती, मगर हमें देखना होगा कि किम जोंग उन कैसे इस खेल को खेलते हैं, क्योंकि अब नेतृत्व उनके पास है। ये थे कोरियन पेनिनसुला फ्यूचर फोरम की एक्सपर्ट डुओन किम के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वार्ता को ऐतिहासिक बताया और कहा है कि अच्छी चीजें हो रही हैं, मगर आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इनका नतीजा क्या रहता है। उन्होंने इस प्रगति का श्रेय भी लिया और कहा कि आज जो संभव हो पाया है उस पर अमरीका के नागरिकों को गर्व होना चाहिए। वहीं उत्तर कोरिया के मुख्य सहयोगी चीन ने इस वार्ता को सफल बनाने के लिए किम और मून की तारीफ की। रूस ने भी इस पहल को सकारात्मक बताया है।
तो रिपोर्ट सुना रहे थे आदर्श राठौड़। अब उस मुलाकात की बात जो भारत के लिए है खास। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज करेंगे नौका विहार। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को चीन के शहर वुहान में पहुंचे थे और छोटी सी अनौपचारिक मुलाकात दोनों नेताओं के बीच हुई थी। आज दोनों नेता फिर से करेंगे बातचीत। क्या क्या होगा आज, किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, थोड़ी देर पहले मैंने बात की वुहान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अतुल अनेजा से।
यहां के 10:30 बजे के करीब भारत के 8 बजे शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक अनौपचारिक तरीके से बातचीत करेंगे। एक तरह से वो यहाँ जो वेस्ट लेक ईस्ट लेक है वुहान में, उसके साथ गेस्ट हाउस है और वहाँ उनके वो चलेंगे, वॉक पे जाएंगे और साथ साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो एक बोट राइड करेंगे, एक किश्ती में जाके फिर 1 घंटे तक उनकी उसमें बोट राइड है और उसके बाद कोई दोपहर तक फिर उनका वो एक लंच ऑर्गेनाइज किया गया है। अब तक की इटिनरी इतनी है और दोपहर के बाद तो प्रधानमंत्री की दिल्ली की तरफ वापसी है।
क्या बात हो सकती है दोनों के बीच में, दोनों आपस में बात कर रहे हैं?
ये एक तरह से ठोस मुद्दे उस तरह से नहीं है जैसे मसूद अजहर या सीपैक वगैरह, इस तरह से बात नहीं हो रही। बात हो रही है सामरिक दिशा के बारे में, उसमें कई टॉपिक्स आ सकते हैं। जैसे चीन की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई थी मंगलवार को, उसमें ये कहा गया था कि बॉर्डर का मुद्दा आएगा बातचीत में, तो वो मुद्दा तिब्बत का मुद्दा और बॉर्डर का मुद्दा, मुझे लगता है ये साथ साथ इसके ऊपर बातचीत, जुड़ी हुई बातचीत हो सकती है। चीन भारत की रिकग्निशन एज ए ग्रेट पावर इन द सेंस कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर की तरफ से चीन की सपोर्ट है, इसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि अगर भारत की मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ जाती है चीन के समर्थन से, तो ये जो मुद्दे जैसे हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये फिर ठीक है पड़ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भारत के साथ, तो ये जो एक तरह से जियो इकोनॉमिक एजेंडा है, इन विषयों पर भी बातचीत होगी।
तो जानकारी दे रहे थे वुहान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अतुल अनेजा।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। अस्पताल अधीक्षक का दावा है कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन मरीज कह रहे हैं कि उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा। डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन की लड़ाई में देश भर से आए मरीज फंस गए हैं। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने वहां आए मरीजों से बात की।
मैं इस वक्त भारत के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाता है, वहां खड़ा हूं। धूप है, चिलचिलाती हुई, दोपहर का वक्त है, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन हड़ताल पर चले गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, और यहां बाहर पेशेंट्स का तांता लगा हुआ है, जो मरीज दूर दूर से भारत के कोने कोने से यहां पर आए हैं खुद को दिखाने के लिए, जाँच करने के लिए। ये बताइए साहब के क्या परेशानी हो रही है?
यहाँ पर जो पूछा गया कि डॉक्टर क्यों नहीं आए, तो उसी वक्त मतलब वो एक लड़के से हुज्जत हुई और उसको मारना शुरू कर दिया। ये सीधे मुंह बात नहीं करते हैं यहाँ के एम्स के जितने भी क्या नाम ये लोग हैं कर्मचारी, ये सिक्योरिटी गार्ड, ये मारते हैं, पब्लिक को सही बात नहीं बताते
हैं। कहाँ से आए हैं?
मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत शाही से आया हूँ।
अच्छा, और आप कहाँ से आए हैं?
एमपी से।
किस जिले से?
शिवपुरी जिले से।
क्या प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपको, क्या हुआ है?
कैंसर का सकाई चल रहा है,
कैंसर की शिकायत
है, मगर सोने के लिए भगा देते हैं गार्ड।
यहाँ कोई रहने की जगह भी नहीं है?
नहीं, रहने की जगह नहीं है यहाँ।
फुटपाथ पर?
हाँ, फुटपाथ में मैं खुद सोया हूँ यहाँ पर, इसमें विश्राम आलय में।
ये बताइए कि आप कहाँ से?
मैं सेहतवान से आया था डिस्ट्रिक्ट बनाई, तो मैंने अपनी आँख का ऑपरेशन कराया था 1 तारीख को, आज ये डेट थी दिखाने की, अब मैं आ गया यहाँ पे, अब कोई नहीं है दिखाने, अब क्या पता कि जो ये चश्मा बनाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई पता नहीं।
तो ये यहाँ पे जो लोग आए होंगे वो बहुत सारा पैसा तो नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर गरीब लोग ही आ रहे हैं?
ऐसा कुछ नहीं है
सर, यहाँ पे मनमानी चल रही है, कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है जो जहाँ पड़ा है बिस्तर पे वो पड़ा ही है।
यहाँ पे ये नहीं है जो आदमी सोच के आता है कि साहब वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट बढ़िया हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, पर यहाँ टाइम कुछ नहीं है, कोई तारीख देते हैं कहीं आओ और जाओ, कुछ नहीं है।
तो चक्कर सेटिंग से होते हैं सर जी, अगर सेटिंग नहीं है तो कोई काम नहीं होगा, बेचारा परेशान होकर आदमी मर जाएगा बाहर।
अब तो हड़ताल में सेटिंग की भी क्या चलेगी?
ये हड़ताल तो ये आज ये मुद्दा उठाया तो आज ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वरना तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये बात पहुँच जाएगी ऊपर तक, इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सेटिंग नहीं है तो आदमी पड़ा पड़ा बाहर मर जाएगा।
मर रहा है इसी हालात से, मर रहा है।
तो सुना आपने, यहाँ जमा लोग धूप चिलचिलाती धूप में जमा है, इन्हें कुछ पता नहीं है कि कब ये स्ट्राइक खत्म होगी, कब इनका इलाज होगा, कब इनके पेशेंट्स को देखा जाएगा। कुछ गंभीर पेशेंट्स हैं जैसे कैंसर के मरीज हैं, जिनको सिकाई करवाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ आसपास कोई रहने की जगह नहीं होने की वजह से और ज़्यादा परेशानी है, पीने के पानी की परेशानी है लोगों को,
बोल का लेना पड़ रहा है यहाँ पे।
सलमान रावी, बीबीसी, दिल्ली।
शुक्रवार शाम को यूपीएससी परीक्षा का नतीजा आया और भारत को मिली उसके नए ब्यूरोक्रेट्स की फेहरिस्त। इस बार परीक्षा टॉप की है हैदराबाद के अनुदीप दुरीशेट्टी ने। अनुदीप इससे पहले भी ये परीक्षा पास कर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। अपने पिता को आदर्श मानने वाले, पिता की मेहनत से सीखने वाले अनुदीप ने अपने बारे में बताया बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा को।
रैंक तो है बट लेकिन उससे बड़ी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स को मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ, एंड माय टीचर्स, ऑल ऑफ देम हैव सपोर्टेड मी, आई एम हियर टुडे बिकॉज ऑफ देम।
अनुदीप, जहाँ आप हैं यहाँ भारत में बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं IAS सिविल सेवा नंबर एक रैंक, क्या एक वजह आपको लगती है, द वन रीजन दैट ब्रॉट यू हियर?
हार्ड वर्क इज ऑलवेज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, जो भी है वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, ये लगता है मुझे। जो भी चीज़ है, हम एक गेम खेल रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, ये लगता है मुझे। एंड वो मेरे फादर से मैंने सीखा है, तो यही जो एग्जाम में मैंने इम्प्लीमेंट किया, एंड आज खुशी की बात है कि मैं एक्चुअली ये अचीवमेंट कर पाया हूँ।
अनुदीप, हम सबके जीवन में हमारे परिजनों का, हमारे दोस्तों का बहुत अहम योगदान होता है, हम जब भी अपनी सफलता की बात करते हैं तो वी ऑलवेज गिव क्रेडिट टू देम, लेकिन इसके अलावा कोई और व्यक्तित्व है जिससे आप प्रभावित हैं, इतिहास का, आज के काल का कोई भी व्यक्तित्व जिससे आप प्रभावित हो?
मैं एक्चुअली हिस्ट्री इज, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, मुझे अब्राहम लिंकन एक बहुत ही अहम इंस्पिरेशन रहा ऑलवेज द वे ही हैज लेड हिज कंट्री थ्रू द वॉर इन टफ टाइम्स. बहुत ही एक ही वाज एन एग्जांपल ग्रेट लीडर.
जी और अनुदीप जब भी हम सिविल सेवा के टॉपर्स से बात करते हैं एक सवाल उनसे हमेशा पूछा जाता है कितनी देर आप पढ़ते हैं कैसी तैयारी करते हैं कि जो है इतना मुश्किल एग्जाम जिसको माना जाता है आप जो है और उसके शीर्ष पर पहुंच गए.
हाँ एग्जाम तो मुश्किल है वो इसलिए मुश्किल है कि काफी डिजर्विंग लोग होते हैं. इंडिया इज अ बिग कंट्री तो मुझे लगता है तो क्वालिटी ऑफ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट की देन कितना कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं. तो मैं वही कर रहा था. आई वॉज वर्किंग इन IRS. आई एम करंटली मेरा 2013 में भी सिलेक्शन हुआ था एंड सो आई वॉज पोस्टेड इन हैदराबाद एज असिस्टेंट कमिश्नर. तो ये जॉब के साथ साथ मैं साइड में ऑन वीकेंड्स एंड जब भी टाइम मिलता था आई यूज टू स्टडी फॉर दिस अटेम्प्ट. तो यही मानता हूँ कि क्वालिटी ऑफ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. आप कितना फोकस से पढ़ रहे हैं एवरीथिंग.
आमतौर पर क्या होता है पढ़ाई की जब हम बात करते हैं तो बड़ा प्रेशर पढ़ने वाले ले लेते हैं तनाव ले लेते हैं उसको लेकर के. लेकिन कई बार क्या होता है जो टॉपर्स होते हैं या जो भी कामयाब होते हैं उनके चरित्र का उनके करेक्टर का एक और लाइट पार्ट भी होता है.
मैं फुटबॉल देखता हूँ और खेलता हूँ. इट हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ बचपन से एंड व्हेनेवर इवन प्रिपरेशन के टाइम पे इट वाज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्ट्रेस बस्टर कह सकते हैं आप. तो इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड इट इज अ उसके अलावा आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉन फिक्शन ज्यादा पढ़ता हूँ.
जब आपने अपनी कामयाबी के बारे में अपनी मम्मा को अपने पापा को बताया अपने दोस्तों को बताया क्या रिएक्शन था उनका या जो वो खुशी.
माय फादर कुडंट बिलीव इट एंड माय मॉम वाज इन टीयर्स एक्चुअली एंड इट्स आल्सो आई एम हैप्पी दैट आई हैव बीन एबल टू मेक देम प्राउड. बहुत ही इट्स स्टिल फील्स अनरियल द फीलिंग इज स्टिल सिंकिंग इन. तो टाइम लगेगा अभी यकीन होने में.
देश भर में कल और क्या क्या घटा है जो आज के अखबारों में छपा है जान लेते हैं स्टूडियो में मौजूद आदर्श राठौर से.
जी सर प्रिया आज के जितने भी अखबार मेरे हाथ में हैं अंग्रेजी के हैं हिंदी के हैं सब में जो दो खबरें हैं वो प्रमुखता से छाई हुई हैं. पहली तो वो जिस पे सारी दुनिया की नज़र रही शी जिनपिंग की मुलाकात और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात उसके अलावा जो दोनों कोरिया के नेता मिले. मेरे पास इस वक्त जो एक नवभारत टाइम्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो दोनों खबरें हैं दोनों को साथ में लिया है और साथ में लिखा है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और तस्वीर लगाई है एक तरफ शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की हाथ मिलाते हुए और दूसरी तरफ जो उत्तर कोरिया के किम जोंग उन है उनके और साथ ही साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून के हाथ में हाथ लेकर बढ़ते हुए तस्वीर.
तो दोनों मुलाकातें ही काफी महत्वपूर्ण रही विश्व के लिए और भारत के लिए.
जी बिल्कुल सब जगह इनका जिक्र है और खासकर वुहान में बर्फ पिघलने के संकेत. जनसत्ता लिखता है कि दुनिया का भला कर सकते हैं भारत और चीन ये नरेंद्र मोदी ने कहा और शी जिनपिंग ने जो कहा कि दोनों देशों का प्रभाव जो है वो तेजी से बढ़ा. साथ ही साथ एक और खबर है कि कठुआ मामले की सुनवाई पर 7 मई तक रोक लगा दी गई है इस पर भी जनसत्ता ने लिखा है. और साथ ही साथ जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने जो शपथ ली है उसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुलीजियम उन्होंने कुलीजियम को बुलाया है ताकि जो फाइल है जो रिटर्न की गई है जस्टिस जोसेफ की उस पर वो विचार करना चाहते हैं. साथ ही साथ एक और जो कठुआ रेप का जो ट्रायल है जो चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई तक के लिए रोक लगा दी है. इसके साथ ही दैनिक भास्कर में एक प्रॉपर्टी को विवाद बहुत छोटी सी खबर लेकिन जिस तरह से वो विभत्स घटना है कि बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन काटी उसको प्रमुखता से लिया है. साथ ही साथ ये खबर भी प्रमुखता से है कल जिस तरह से UPSC ने जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजे निकाले हैं उसकी भी खबरें आ रही है. जो प्रथम जिन्होंने रैंक लिया है वो पहले 2 बार नाकाम हो चुके थे इस बार उन्हें कामयाबी मिली है. जी
हेमवती नंदन बहुगुणा जो 70 के दशक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनके बारे में कहा जाता था कि उनमें भारत के प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत थी. 1977 में उन्होंने ही जगजीवन राम को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार किया था. इस घटनाक्रम ने लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. हेमवती नंदन बहुगुणा के शताब्दी वर्ष में उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में.
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता अक्सर कहा करते थे बहुगुणा के नाम पर मत जाइए उनका व्यक्तित्व और चरित्र उसके ठीक उल्टा है. अपने आप में हासे तिकड़मी रहे सीबी गुप्ता को बहुगुणा की तिकड़म का स्वाद तब चखना पड़ा जब 1974 के विधानसभा चुनाव में अपने गढ़ लखनऊ में न सिर्फ वो हारे बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई. 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब दोनों एक पार्टी में आ गए तो गुप्ता ने बहुगुणा से पूछ ही लिया, बहुगुणा अब बता ही डालो कि 1974 में तुमने किया क्या था। बहुगुणा अपनी शर्मीली मुस्कान बिखेर कर बोले थे, पुरानी बातों को भूल जाइए बाबूजी। 77 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मतपेटियों को सेफ हाउस में रखा गया तो बहुगुणा ने यह सुनिश्चित करवाया कि उस सेफ हाउस के रोशनदान तक को सील करवाया जाए। चंद्रभानु गुप्ता ने उस समय बड़ी बारीक और दिलचस्प टिप्पणी की थी। अब मुझे पता चला कि उस चुनाव में मेरी जमानत क्यों जब्त हुई थी। इस घटना में सच्चाई हो या न हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने जमाने में हेमवती नंदन बहुगुणा की गिनती भारत के सबसे चतुर नेताओं में होती थी। बहुगुणा को नजदीक से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार बीएन उनियाल कहते हैं,
बहुत तेज थे, मेधावी थे, बहुत जल्दी किसी भी इंसान को पहचानते थे, जिसे कहते हैं कि किसी के नस और नब्ज पहचानना। उस दौर में पूरे यूपी की ऐसी जानकारी उनको हासिल हो गई थी कि हर जिले के पंचायत से लेके ब्लॉक तक और राज्य स्तर तक हर शख्स को जानते थे, नाम से जानते थे, चेहरे से जानते थे, और खाली कांग्रेस के नहीं, सभी पार्टियों के हर शख्स को जो था जानते थे। और खाली जानना ही नहीं था, जैसे गोट बिठाना कहते हैं, जुगत लगाना, जानते थे किसकी नब्ज कहाँ है, कौन किसकी सुनता है, किसका किस पे असर है।
बहुगुणा की राजनीति की शुरुआत इलाहाबाद से हुई थी, जहां वो छात्र नेता और फिर मजदूर नेता हुआ करते थे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान तब बनी जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रही राजकुमारी अमृत कौर का चुनाव लड़वाने उन्हें मंडी भेजा।
1952 में जब पहला चुनाव हुआ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश से मंडी महासू एक कॉन्स्टिट्यूंसी है थी उस टाइम में, अब तो खाली मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से राजकुमारी अमृत कौर को टिकट मिला। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, लेकिन कभी पहाड़ गई नहीं थी, तो कुछ दिन में वो तंग आ गई। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ, मुझे भेज दिया जवाहरलाल तुमने। उन्होंने शास्त्री जी को कहा, भाई वो अलाहाबाद में एक था ना, वो पहाड़ी लड़का था, वो पहाड़ी पहाड़ी वो भगोना भगोना, वो कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा जी वहीं होगा। बोले भेजो उसको, उसको भेजना है मंडी भेजो। उसे बोला अमृत के पास जाएगा, मदद करेगा अमृत, बुलाओ दिल्ली उसको। मुझे मालूम था मंडी कहाँ है, हम गढ़वाल के, लेकिन जवाहरलाल समझते थे कि भाई एक पहाड़ी सारा पहाड़ी, तो ये सोच के हमको यहाँ उन्होंने भेज दिया। तो वहाँ 2-3 महीना राजकुमारी अमृत कौर के साथ रहे। उन्होंने आगे जवाहरलाल से कहा, लड़का बहुत अच्छा है, इसने बड़ा काम किया है, वेरी यूजफुल टू मी। तो जवाहरलाल की नज़र में आ गए, और जवाहरलाल की नज़र में आ गए तो लोकल कांग्रेस में भी इम्पोर्टेंट हो गए।
1971 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें पहले अपने मंत्रिमंडल में संचार राज्य मंत्री बनाया और फिर 1974 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें लखनऊ भेजा। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही उनके इंदिरा गांधी से मतभेद शुरू हो गए। खुद बहुगुणा ने एक बार बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
मेरे मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी से और मुझसे बुनियादी एक बात पर पहले ही झगड़ा हो गया। उनका ख्याल था कि मैं हर काम उनसे पूछ के करूं। मेरा कहना था कि बैक सीट ड्राइविंग संभव नहीं है, इतने बड़े प्रदेश का काम चलाने के लिए जो मुख्यमंत्री है उसको अपना निर्णय करना होगा। और मैंने उनसे साफ कहा कि मेरे कंधे पर आपका सर नहीं हो सकता। वो चाहती थी कि मैं उनके लड़के को लेकर उत्तर प्रदेश में घूमूं, जैसे राजस्थान और दूसरी जगह के मुख्यमंत्री घूम रहे थे। मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा अपने पैरों इनको चलना होगा, काम करें, आगे बढ़ें, मेरे कंधे पर नहीं हो सकता।
इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हो गईं जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को भ्रम हो गया कि बहुगुणा उनकी कुर्सी हथियाने की फिराक में है।
उन्होंने लखनऊ में एक ग्लोबल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कराई। बहुगुणा मुंतजिम बहुत अच्छे थे, किसी भी चीज को इंतजाम करना हो नजर रखते थे। और उन्होंने ढंग से किया वहाँ पर कि हर मुल्क का डेलीगेट दिल्ली आते हुए जब इंदिरा गांधी से मिला तो कहा कि साहब बहुगुणा बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, और चारों तरफ उनकी वाह वाह होने लगी, खासकर मुस्लिम समाज में। और जैसा होता है हर दल में होता है, जब वाह वाह हुई तो 10 लोग उसके खिलाफ भी हो गए। उनमें एक मोहम्मद यूनुस इंदिरा गांधी के बहुत चहेते दरबारी लोगों में थे, उनको किसी काम से इंदिरा गांधी ने मिडल ईस्ट में तो लौट के आए, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि वहाँ जाके कुछ मेरा तो कोई फायदा नहीं, जिसके पास जाइए वही बहुगुणा की बात कर रहा था। हर शख्स ये कह रहा था कि बहुगुणा बड़े काबिल है आपके यहाँ। तो मोहम्मद यूनुस ने कहते हैं काफ़ी काम इंदिरा गांधी के पर है, लेकिन कहा गया साहब बहुगुणा जो है अपना ग्राउंड बना रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए।
सार्वजनिक जीवन में तेज तर्रार नेता की छवि रखने वाले बहुगुणा का निजी जीवन कैसा था? हमने रीता बहुगुणा से पूछा कि उनके पिता के राजनीति के अलावा और कौन कौन से शौक थे।
पिताजी पढ़ते बहुत थे, कोई चीज हाथ में आ जाए, और उनकी मेमोरी बहुत गजब थी, जिस चीज पे एक बार निगाह पड़ गई भूलते नहीं थे। उन्हें खाना बनाने का शौक था, तो नॉन वेज खाना बहुत अच्छा बनाते थे। म्यूजिक का शौक उन्हें ज्यादा नहीं था, संगीतकारों में सहगल के गाने उनको अच्छे लगते थे, ओल्ड टाइम।
जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे।
1977 में जब आम चुनाव की घोषणा हुई तो बहुगुणा ने जगजीवन राम से मिलकर उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देने के लिए मनाया। जनता पार्टी की चुनावी जीत में इस घटनाक्रम की बहुत बड़ी भूमिका रही।
वो चौहान साहब से मिले, चौहान साहब उनको हाथ पकड़ के बाहर लॉन में लाए कि अंदर टेलीफोन पर कहीं कोई यंत्र लगा हो, कुछ लगा हो सुन लें। तो चौहान साहब लॉन में बात करते थे, उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो बहुगुणा, नहीं नहीं मैं कांग्रेस से बाहर नहीं मरना चाहता। बाबूजी इसके साथ में कोशिश कामयाब होने में बहुत अच्छा लगा, मिलने के लिए भी बड़ा तंत्र मंत्र करना पड़ता था। हमारे जैसे दोस्त लोग काम आते थे, वो कहीं से टैक्सी लेके आए, इंडिया गेट में उतर गए, वहाँ से पैदल जयपुर हाउस तक आ गए, वहाँ हम गाड़ी लेके चले गए, वहाँ कई जगह दसों गाड़ियाँ बदलते बदलते उनको छोड़ते थे। तो बाबू जी को कुछ लगा के संभव है, और वो संभावना और ज़्यादा तब बढ़ गई जब एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग बहुगुणा जी की, EMS नंबूद्रीपाद की और राजेश्वर राव की, किसी पत्रकार के घर में डिफेंस कॉलोनी में हुई। बाबू जी पे सबसे ज़्यादा असर बहुगुणा जी के कहने का से ज़्यादा बाबू जी का बेटा था सुरेश राम। सुरेश राम को दिखाई दिया कि बाबू जी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो सुरेश राम प्लेड ए बिग रोल इन दैट, एंड बहुगुणा जी यूज सुरेश राम टू परस्यूएट बाबू जी।
जनता पार्टी सरकार चल नहीं पाई और बहुगुणा ने एक बार फिर इंदिरा कांग्रेस का दामन पकड़ा। वहाँ एक बार फिर इंदिरा गांधी से उनकी नहीं बनी और उन्हें फिर कांग्रेस छोड़नी पड़ी। बहुगुणा 1984 का संसदीय चुनाव अमिताभ बच्चन से हार गए। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर कभी उठ नहीं पाया। बहुगुणा शायद उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जिसकी कि उनके प्रशंसक या वो खुद उम्मीद करते थे, लेकिन एक बात तय थी, वो आम राजनेताओं से हट कर थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके पुष्पेश पंत कहते हैं,
मुझे लगता था कि एक व्यक्ति जिसने बड़े कौशल से और बड़ी दूरदर्शी दृष्टि से अपने को नेहरू के अक्स में ढालने की कोशिश की थी, वैसा ही चूड़ीदार पजामा, वैसी ही शेरवानी, टोपी कुछ उसी तरह से बाकी तिरछी सर पे रखी हुई, तलफ़ुज उर्दू का उतना ही खालिस, हिंदी और अंग्रेजी में समान रफ्तार से बोलने की क्षमता, एक अपनी ऐसी पहचान बनाना कि छोटे पैमाने में कि मैं छोटा नेहरू हूँ और शायद किसी एक दिन उस कुर्सी पर जा के पहुँच सकता हूँ। ये उस पीढ़ी के नेता थे कांग्रेस के जब आज़ादी मिली ही मिली थी इस देश को। मेरे ख्याल में हेमवती नंदन बहुगुणा जी के अपने दिमाग में जो अपनी छवि थी वो विचारधारा के आधार पर विविधता में एकता वाली, वो हिंदू मुसलमान हो, वो शहरी और ग्रामीण हिंदुस्तान की बात हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, गरीब के हितों का सवाल हो, बहुगुणा जी की छवि कमोबेश आज़ादी के बाद की पीढ़ी वाले नेहरू सरीखे नेता की थी।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
तो ये थी हेमवती नंदन बहुगुणा पर रेहान फजल की विवेचना। आपको कैसी लगी आप हमें जरूर लिखिएगा। और एक बार फिर से मुख्य समाचार सुन लेते हैं आदर्श राठौर से।
BBC समाचार। कल उत्तर कोरिया के सुप्रीम नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच ऐतिहासिक मुलाकात हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज चीन के वुहान में दूसरे दिन अनौपचारिक वार्ता करेंगे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि वो ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप के साथ बातचीत जारी रखेंगी। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने आरोप लगाया है कि देश की पुलिस उन्हें पद से हटाने की साजिश कर रही है। सहायता समूहों का कहना है कि सोमालिया में आई भीषण बाढ़ से करीब 5,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित ज्यादातर इलाके पहले से ही संघर्ष से जूझ रहे थे। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने, फेसबुक पर आप तक यह कार्यक्रम पहुंचाया मीना कोटवाल ने। शाम 7:30 बजे फिर से हाजिर होंगे, तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। सर्वप्रिया सांगवान को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।